Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadadha Shri Bhasadi Bhakta Vrinda Jaya Shri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Dham, Krishna Balaram. Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhesham, Lalita Vishakha Jaya Radhesham. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya.
Nitalele Pavishta Jayang Vishnu Pad Paramahamsa Parivajak Chajyashta Darsata Srishimad. Esi Bhakti Vedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada Ki. अनंत कोटि वैष्णव भक्त बुंद की नामाचार्य चल हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ग स्वामी प्रभुगण की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बुंद की जय श्री बुंदान मथुरा धाम की जय श्री नवदीप मायापुर धाम की जय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री बद्रिका धाम की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री कृष्ण भक्ति पदायिनी श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय श्री गंगा मैया जमुना मैया की श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. तो आज की इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कथा में आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और समस्त उपस्थित वैष्णव और वैष्णव के चरणों में वैष्णवी के चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस जो वास्तविक ये मेरा प्रथम भागवत कथा है श्रीमद् भागवतम के ऊपर इससे पहले चेतन चेतन गीता का प्रवचन हो चुका है लेकिन श्रीमद् भागवतम एक महापुराण की बोलने के लिए जो योग्यता है निश्चित रूप से मेरे पास वो है नहीं तो फिर भी आप लोग की कृपा से और जो पूर्ववर्ती आचार्य उनसे जो भी कुछ सीखा है सुना है और पढ़ा है तो मैं प्रयास करूंगा आज के जो श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए तो इसलिए आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें अगर उसमें कहीं त्रुटि हो तो मुझे अपना दासानुदास समझकर मुझे क्षमा कर देना ओम नमो भ भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आप लोग पिछले कुछ दिनों से श्रीमद् भागवतम की जो 10 विषय वस्तु है आप लोग सुन चुके हैं कि सर्ग विसर्ग स्थान और उसके उपरांत पोषण, भगवान किस प्रकार अपना भक्त को सुरक्षा देते हैं पोषण, और उसके उपरांत जो पांचवी विषय वस्तु है श्रीमद् भागवतम की वो है उतया, और छठा विषय वस्तु है मन्वंतर। ये सारे अलग अलग मनु के जो शासन के बारे में आप लोग श्रवण करते आ रहे हैं, तो उसके उपरांत ईशानु कथा द साइंस ऑफ गॉड, इसके बारे में आप लोग सप्तम स्कंद में सुन चुके हैं, और अष्टम स्कंद में आप लोग जो है निरोध यानी कि डिसोल्यूशन इसके बारे में श्रवण कर चुके हैं। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम की नवम स्कंद जो कि भगवान श्री कृष्ण की ग्रीवा के साथ तुलना की गई है, तो ये है मुक्ति, इसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और इसके उपरांत जो दसम विषय वस्तु है यह है आश्रय। इसी 10 विषय वस्तु है श्रीमद् भागवतम की। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे आज नवम स्कंद की तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है च्यवन मुनि और सुकन्या के विवाह। बड़ा बहुत रोचक प्रसंग है। तो आप लोग परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र महाराज और पिछले क्लास में परसों के दिन विश्वरूप प्रभु से सुनते आ रहे हैं, तो आज हम 10-11 श्लोक की ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। कस्यचित् तु अथ कालस्य नासत्यो आश्रम आगतौ तौ पूजयित्वा प्रवाच वयः मे दत्तम् ईश्वरौ कस्यचित् अथ कालस्य नासत्यवाश्रमागतौ तौ पूजित्वा प्रवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ कस्यचित्त्वथ कालस्य नासत्या माम् आश्रमागतौ तौ पूजित्वा प्रवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ कस्यचित्त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमामगतौ तौ पूजित्वा प्रवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ। कस्यचित्त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ तौ पूजित्या प्रोवाच तम समीचीनम् चित्वात्मकालस्य न सत्याभाश्रमागतौ तौ पूजित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरो कालस्य न सत्याभाश्रमागतो तौ पूजितया प्रवाच वयो मे दत्तमीश्वरो कस्यचित् तथा कालस्य न सत्यवामाश्रमागतो तौ पवित्वा प्रवाच वयो मे दत्तमीश्वरो पूजित्वा प्रवाच वयो मे दत्तमीश्वरो कस्यचित्तकालस्य न सत्यवामश्रमागतौ तौ पूजित्वा प्रवाच शब्दार्थ कस्यचित् कुछ समय बाद तू लेकिन अथ इस प्रकार कालस्य समय के बीतने पर ना सत्यो दोनों अश्विनी कुमार आश्रम च्यवन मुनि के स्थान पर आगतो पहुंचे तो उन दोनों के पूजयित्वा सत्कार तथा नमस्कार करके प्रवाच कहा वयः तारुण्य में मुझको दत्तम कृपा करके दे दो ईश्वरो क्योंकि तुम दोनों ऐसा करने में समर्थ हो। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति विनोद स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। कुछ काल बीतने के बाद दोनों अश्विनी कुमार जो स्वर्गलोक के वैद्य थे च्यवन मुनि के आश्रम पधारे, उनका सत्कार करने के पश्चात च्यवन मुनि ने उनसे यौवन प्रदान करने हेतु प्रार्थना की क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे। तात्पर्य अश्विनी कुमार जैसे स्वर्ग के वैद्य किसी को भी यौवन प्रदान करने कर सकते थे, चाहे वह वृद्ध ही क्यों ना हो। निस्संदेह बड़े बड़े जोगी अपने योग शक्ति से सब में भी जीवन फूंक सकते हैं। यदि शरीर के संरचना बिगड़ती नहीं हो, शुक्राचार्य द्वारा बलि महाराज के सौनिकों के उपचार के प्रसंग में हम उसके व्याख्या पूर्व में कर चुके हैं। यद्यपि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र सबको जीवित करने या वृद्ध शरीर में यौवन लाने में असमर्थ है, किंतु इन श्लोकों से हमें पता चलता है कि यदि कोई वैदिक शास्त्र से ज्ञान प्राप्त कर ले तो ऐसा उपचार संभव है। आयुर्वेद में दोनों अश्विन कुमार धन्वंतरी के ही समान पटु थे। यदि भौतिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा में पूर्णता प्राप्त की जाती है तो इसे प्राप्त करने हेतु वैदिक साहित्य का अवलोकन करना चाहिए, किंतु सबसे बड़ी पूर्णता सिद्धि तो श्री भगवान का भक्त बनना है। इस पूर्णता को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को श्रीमद् भागवतम का अवलोकन करना चाहिए, जो वैदिक कल्पतरु का फल पका हुआ फल माना जाता है। निगम कल्पतरु गलितम फलम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वसभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जयतम स्रोतोपंगर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्य पदं भोजो राधा मदन मोहनो वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव्येव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसि नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं जत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं मंदिर का प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज मुझे ऐसा शुभ अवसर प्रदान किया गया है श्रीमद् भागवतम जैसा महापुराण के बारे में कुछ बोलने के लिए। तो जैसा आप लोग सुनते आ रहे हैं, ये चैप्टर का नाम क्या है, च्यवन मुनि और सुकन्या, इन दोनों का विवाह है कि नहीं। तो ये हम जैसा अलग अलग शास्त्र में अध्ययन करते हैं, उपनिषद में, महाभारत में, पद्म पुराण में और श्रीमद् भागवतम तो है ही। तो ये च्यवन मुनि के बारे में भी बहुत सुंदर वर्णन है। ये एक ब्रह्मर्षि थे, जो सबसे जो ऋषि का जो टॉप मोस्ट लेवल होता है ये है ब्रह्मर्षि, राजर्षि, जो क्षत्रिय लोग रहते हैं। और वो जब ब्रह्म को जान लेते हैं और ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाते हैं उनको ब्रह्मर्षि बोलते हैं। बड़ा तेजस्वी पुरुष रहते हैं। और इस प्रकार उनके जो आश्रम था ये पयोसनी, पयोसनी करके एक नदी है, पवित्र नदी है, उसके तट पर उनका आश्रम स्थित है। तो आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि बिहार में ऐसा स्थान है अभी भी। हो आप लोग जो खाते हैं ना च्यवनप्राश, ये च्यवन मुनि के नाम से ये सब प्रसिद्ध है। तो ये बड़ा वेदज्ञ थे। अपना पिता जो थे भृगु, जो सप्तर्षि में से एक आते ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भृगु, उनके पुत्र थे। और उन्होंने सारे वेद का ज्ञान जो ये भृगु से सीखा था, और उसके उपरांत फिर ब्रह्मा जी से भी वेद ज्ञान उन्होंने प्राप्त की थी। और अपने तपस्या के लिए बड़ा प्रसिद्ध थी। लेकिन एक दोस्त था उनमें, बड़ा क्रोधित हो जाते थे, छोटे छोटे बात पर बहुत इरिटेबल हो जाते थे। पिछले श्लोक में आपने सुन चुके हैं, विश्वरूप प्रभु ने बोला रहेगा जरूर कि किस प्रकार जो सुकन्या थी उनका विवाह होता है, इसके बारे में थोड़ा बताने जाऊंगा अभी। तो उसके उपरांत वो कैसा उनको मनोभाव को समझकर, अपना जो पत्नी का धर्म होता है कि पति का मनोभाव को समझकर उसका सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार जब च्यवन मुनि का सेवक, कई एक शास्त्र में कहा गया है कि अरुषि, अरुषि करके एक उनका पत्नी थी, बट मुख्यतः जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है यह है सुकन्या, वो उनके पत्नी थे च्यवन मुनि के, है कि नहीं। तो और सुकन्या के बारे में तो आप लोग शायद जानकारी प्राप्त हुआ रही है कि सुकन्या, सु अर्थात उत्तम गुणवती जो है, कन्या अर्थात बालिका। तो ये थे
सरयाती सरयाती का ये कन्या थी, और सरयाती जो थे वैवस्वत मुनु के पुत्र थे, तो उनको कई संतान थे, तो उसमें से सबसे गुणवती थी यह सुकन्या। तो एक बार ऐसा वो भी दिखने में बड़ा सुंदर थी, हाँ अपना यौवन अवस्था में थी, 16-17 साल उम्र थी उनकी। तो उसी समय एक बार ऐसा हुआ कि चेवन मुनि के आश्रम में मुनि जी के दर्शन करने के लिए, पहले जमाने में राजा लोग आते थे, उनसे कुछ उपदेश प्राप्त होते थे और कैसा राज्य कार्य को सुचारू रूप से पालन करे और अपना गृहस्थ धर्म को निभाए, तो इस प्रकार वो आकर मुनि ऋषि से मिलने आते थे। तो इसी प्रसंग में ऐसा वर्णन है कि जब वो आए थे एकदा, तो मुनि आश्रम में अपना पूरे सेना और अपने परिवार, पुत्री कन्या अर्थात जो पुत्र कन्या और सारे परिवार के साथ और पूरा सेना के साथ आकर उपस्थित हुए। तो उस समय च्यवन मुनि ये तो बहुत जो है ध्यान तपस्या में थे और समाधिस्थ थे, और इतना तेज निकलता था उनका शरीर से कि चारों तरफ आलोकित हो जाता था। तो इतना समय तपस्या करने के उपरांत क्या जो दिमक का जो मिट्टी ये उसके ऊपर ऐसा हुंका जैसा, वही हुंका बोलते हैं हम लोग उड़िया में, तो दिमक का पहाड़ जैसा बन गया था। तो लेकिन एक जो उनका आंख था, ये आंख दोनों बाहर से दिख रहा था, एक कैसा दिख रहा था जैसे कोई ज्योति निकल रहा है, जैसा तो लेजर का हम टॉर्च लाइट जलाते हैं ना, तो ऐसा दो हुंका से ऐसा दिमक हुंके से ऐसा दिख रहा था। तो उसी समय जो थे राजा आकर पधारे अपने सेना और इनके साथ, तो उसी ये में जो एक से तो देखे कि मुनि ऋषि जो तपस्या में मग्न है, तो राजा उनके सारे व्यवस्था थे सारे सेनाओं के साथ वहां रहने लगे। और जब संध्याकालीन समय हुआ तो राजा जाकर मुनि जी के दूर से प्रणाम किए, तो उसके साथ साथ उनके पीछे पीछे उनका जो पुत्री थी सुकन्या, वो भी अपना सहेलियों के साथ वहां जाकर उपस्थित हुई, और वो भी राजा जी को जो है जो मुनि ऋषि को वहां जब देखने लगे कि दिमक के जो पहाड़ जैसा बन गया था, तो छोटे छोटे जो आलोक दिख रहा था, तो उसका बड़ा कौतूहल हुआ। कौतूहल वश और ज्ञान वश उसने क्या किया कि दो कांटा लेकर उसके जैसा बच्चे लोग का आदत होती है, कुछ नया चीज देखते तो उसको थोड़ा उंगली करने का उनको बहुत आदत रहती, तो वैसा ही उन्होंने जब दोनों कांटा डाल दिया तो अचानक एक भयंकर शब्द अंदर से आया, कोई चित्कार कर रहा है और उधर से खून का रक्त का धारा बहने लगा। तो भयभीत हो गई, तो वहां से जाकर अपना कमरे में छुप गए, और क्या हो गया, मैंने इसे बहुत बड़ी अपराध हो गया, कौन है उसके अंदर, निश्चित कोई मुनि महात्मा रहेंगे, तो उसको तो पता नहीं था कि उसी के अंदर ही मुनि थे, उनका पिता को पता था। लेकिन तो इसके उपरांत जब रात्रि समय हुआ, सब लोग अपना डिनर तो खा लिए, लेकिन सुबह सुबह बहुत बड़ी समस्या हो गई। आप लोग जानते हैं ना सुबह सुबह क्या करना के रहता है, ये शौच क्रिया दोनों बंद हो गया, टट्टी पिशाब दोनों, सारे सेना सारे ये सब बंद, पेट में भरा हुआ है लेकिन बाहर नहीं जा रहे, तो क्या हो गया क्या करेंगे, सबका एक ही हाल है। तो राजा बड़ा चिंतित हो गया, राजा ने इमरजेंसी मीटिंग बुला लिया सुबह सुबह, ये क्या घटना, क्या हो गया, किसने जरूर कोई अपराध किया है मुनिवर के चरणों में, नहीं तो ऐसा क्यों ऐसा हालत है। तो सब लोग जब एकत्रित हुए तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो बोले हमने तो कुछ नहीं किया है। तो इसी समय जो सुकन्या थी उसको तो पता था उससे ही गलती हुई है, तो जाकर सबके सामने तो नहीं बोली, अपने पिताजी को रिक्वेस्ट करके अपना कमरा में बुलाई, बोले चरण में गिर पड़ी और बोलती है कि मेरे से ही अपराध हुई, मैं अज्ञान वशत इसी मुनि के जो ज्योति स्वरूप आंख थे उसी के अंदर कांटा डालने के कारण उसे रक्त स्राव हो गया। आप तो जब ये बात सुने सरयाजीत खूब भयभीत हो गए, अरे क्या कर दिया तुमने, तुमको पता है ये च्यवन मुनि जो होते इतना क्रोधी है, उनकी इच्छा मात्र से तुम्हारे हमारे सारे वंश और सेना सारे नष्ट हो जाएंगे, क्यों ऐसा किया तुमने। वो रोने लगे, बेचारा मेरे से ज्ञान से हो गया, मैं तो जानता नहीं था मुनि है करके, मैं तो सोचा कोई लाइट है, तो ऐसा करके मैंने तो कर लिया, जो हो गया हो गया, अभी क्या समाधान क्या करे। तो फिर राजा बड़ा चिंतित होकर फिर अगले जब सुबह गए मुनि ऋषि के चरण पर, उनके सब निकाल दिए का जो सब क्लियर करने के बाद मुनि ऋषि बैठे, आंख से अंधे हो चुके थे तो बड़ा क्रोध में थे। तो राजा ने चरण उनके चरण में जो अष्टांग प्रणिपात करके तो बोलते हैं मुनिवर कृपा करके हमें श्राप मत दीजिए, हमारा जो लड़की है ये 18 साल भी नहीं हुआ है, नाबालिका है, इज नॉट इवन माइनर मेजर, अभी तक वो उसको हिदायत ज्ञान नहीं है, तो गलती से जो हो गया तो आप के लिए प्रसन्नता के लिए मैं समझ सकता हूँ, वृद्धावस्था में है आपका दांत सब झड़ चुके हैं और चमड़ा जो सब ढीला हो चुके हैं और आप उठने बैठने का भी शक्ति नहीं, तो आपको निश्चित रूप से और ऊपर से आंख भी चला गया, तो इसलिए आपको एक सेवक और सेविका की आवश्यकता है कि नहीं। तो इसलिए पहले जमाने में जो मुनि ऋषि और ऐसा सब जो भी भागवत में जितना भी वर्णन है, ऐसा इसको मत समझिए कि ये कोई कहानी है, नहीं, ये भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा से ऐसा बहुत सारे मुनि है जिनके विवाह होती है ऐसा ऐसा लोगों से, तो लोग समाज को शिक्षा देने के लिए या भगवान ने कोई लीला करना चाहते हैं, जैसा अत्रि और अनुसया उनसे भी बहुत कुछ लीला हुई, आप लोग सब जानते हैं ये सब के बारे में, तो इस प्रकार इसको साधारण मत समझिए। तो जब वो बोले कि मैं अपना पुत्री को आपको विवाह में के रूप में आपको प्रदान करना चाहती हूँ, तो मुनि थोड़ा शांत हो गए, बोलते ठीक है, तो मैं तो इतना बूढ़ा हूँ, ये तो बहुत कम उम्र का है, तो कोई बात नहीं। इससे आप लोग माताएं को सब सीखना चाहिए कि जब स्त्री का धर्म होता है सेवा, आप लोग कर्दम और देवहूति उपाख्यान में सुन चुके हैं कि किस प्रकार विवाह के कुछ समय तक जो है देवहूति खूब सेवा की कर्दम मुनि का, इतना प्रसन्न हो गए, तो बोले कि आप जो है, फिर जब उनका समय हुआ तो वो मानसरोवर में स्नान करके, फिर आप लोग सब जानते हैं उसकी लीला आगे का, भगवान कपिल देव भी उसी ये में आए थे, तो तृतीय स्कंद में वर्णन है। तो उसके इसी सिलसिले में जैसा हम देखते आगे, तो ये खूब सेवा करने लगी अपने पति का, तो मन प्राण देकर बिल्कुल उनका मनोभाव को समझकर, व्हाट इज हिज एटीट्यूड, ऐसा समझकर उनका सेवा करती थी, और सेवा के द्वारा उनका हृदय को जीत ली, कौन, सुकन्या। तो उसी समय तो मुनिवर का भी उसके पर थोड़ा कृपा हुई, तो मुनिवर सोचने लगे अगर काश में अगर नौजवान बन जाता था तो शायद मैं भी उसको कुछ, जैसा पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन होती है तो हर स्त्री का भी कुछ आशा रहती है, मुझे कुछ संतान प्रदान करेंगे, कुछ सुख प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार जब च्यवन मुनि को ये मन में चिंतन हो रहे थे कि कहीं ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि मैं मेरा अपना पूर्व यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाऊं, तब मैं जो है सुकन्या के साथ अपना दाम्पत्य जीवन बिता सकता हूं। तो इसी प्रकार जब चिंतन में थे तो आज का श्लोक जैसा है, एक काल में तो ये दोनों अश्विनी कुमार जो होते हैं, ये है सूर्य देव का दोनों जुड़वा पुत्र है, अश्विनी अश्मिन्स अश्व, उनके मुख जो थे घोड़े के समान थे, बड़ा सुंदर थे, तेजी तेज निकल रहा था शरीर से, सोने के रथ पर पूरा सारा पृथ्वी को भ्रमण करते थे, पृथ्वी नहीं 3-14 लोक को भ्रमण करते थे। वो दोनों थे देवाधि डॉक्टर्स, यानी कि राज वैद्य थे, उस समय तो एलोपैथी होम्योपैथी नहीं था, आयुर्वेद ही था, और के जैसा प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है, इतना क्वालिफाइड फिजिशियन थे, दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू धन्वंतरी जो भगवान की अवतार है, तो उन्होंने सारे ज्ञान जो है प्रजापति दक्ष से सीखा था, आप लोग दक्ष यज्ञ जानते हैं ना, जो पार्वती जी का जो पिता प्रजापति, तो उनसे उन्होंने सारे आयुर्वेद शिक्षा किया था, उसके उपरांत और दो विद्या उन्होंने प्राप्त की थी जो है मधु चिकित्सा और है प्रवर्ग चिकित्सा, ये भी एक जैसा सर्जरी और मेडिसिन दो ब्रांच होते हैं हमारे मेडिकल में, तो इससे इसको भी पूरा शिक्षा की थी ये दधीचि मुनि से, दधीचि मुनि का नाम सुना रहेगा जैसे इंद्र का वज्र बना था। तो इस प्रकार तो इन्होंने बड़ा प्रवीण थे, इतना एक्सपर्टाइज थे उनके, खाली मेडिसिन नहीं, वो बाल विद्या पीडियाटिक्स और जो है काय चिकित्सा यानी कि शरीर का चिकित्सा और शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी और ट्रांसप्लांटेशन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आप लोग सुना है हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट, हजार हजार आजकल टेक्नोलॉजी आ गया, तो ये पहले भी जमाने में ऐसा था और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा इम्यूनो सप्रेशन स्टेरॉयड वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता था, जस्ट बाय मंत्र, बिकॉज हर चीज जो है हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, गीता में भगवान कहते हैं सारे चीज जो मेरे से ही निकलता है कि नहीं। तो इस प्रकार ये दोनों वैद्य तो थे लेकिन ये सूर्य पुत्र होने के नाते नाते जो सूर्य और संजना इन दोनों के संयोग से ये हुए थे, संजना का विवाह के बाद जब सूर्य लोक में गई थी तो उसको बहुत गर्मी लगा, सूर्य उत्ताप सहन नहीं कर पाई, वो वहां से निकलकर अगर जंगल में भ्रमण करने लगी, उसी समय सूर्यदेव ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे जंगल के अंदर, तो फिर जब दोनों का संयोग हुआ तो इसी जुड़वा पुत्र हुए थे और तीसरा पुत्र भी एक हुआ था जो भी है, तो उसके उपरांत इन्होंने शिक्षा दीक्षा सब प्राप्त कर ली और बहुत बड़े डॉक्टर थे और स्किन ग्राफ्टिंग हर तरह और सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट थे ब्रेन जो हेड ट्रांसप्लांट, आप लोगों ने कभी सुना है कि अगर किसी को सर काट दिया जाए और किसी को बोलते हैं इसको जोड़ दो, कोई जोड़ सकता है? अभी तक हम भी डॉक्टरी किए हैं 30 साल से हमारा अनुभूति है, अभी तक मेडिकल साइंस में कोई डेवलप नहीं हुआ है कि कोई कटा हुआ सर को जोड़ दे, है, तो उसके लिए एक आदमी तो मर जाता है, मरा हुआ आदमी को जिंदा कैसा किया। प्रभुपाद तात्पर्य सुंदर से लिखते हैं कि मरा हुआ आदमी को जिंदा किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है, इसको बोलते हैं मृत्यु संजीवनी मंत्र। क्या बोलते हैं? मृत्यु संजीवनी, जिसका आपने सुना है। शुक्राचार्य जी ने भी जब किए थे, बलि महाराज और सारे सेनाओं देवता के द्वारा मारे गए थे, है कि नहीं, तो मृत्यु संजीवनी मंत्र के द्वारा इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया था। बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में। तो ये मृत्यु संजीवनी मंत्र होता है, ये गरुड़ पुराण में जैसा वर्णन है, ये है अखी ओम ओम स्वाहा, ऐसा करके एक मंत्र है। तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते, हम बोले तो भी काम नहीं करेगा। ये जो होता है, जो आदमी मर जाता है कि नहीं, अस्पताल में हो या घर में हो, व्यक्ति का मृत्यु के बाद उसके कान में 3 बार इस मंत्र को बोलना होता है। तो लेकिन जो बोलने वाला अगर क्वालिफाइड है, उसके लिए कॉम्पिटेंट है, जो ये अश्विनी कुमार दोनों के थे, ये क्या करते थे, ये जोड़ देते थे, आर्टरी टू आर्टरी, वेन टू वेन, नर्व टू नर्व, स्पाइन टू स्पाइन, मसल टू मसल, स्किन टू स्किन, बात खत्म, हेड सर्जरी ओवर, फिर बाद में वो जो है मंत्र को उच्चारण करते हैं, जो मृत्यु संजीवनी मंत्र, अति ओम ओम स्वाहा, ये मंत्र। तो इसको उच्चारण करने से आदमी जीवित हो जाता था, है, तो ऐसा एक्सपर्ट थे वो। और उसके सबसे पहला प्रयोग उन्होंने किया अपना जो है आध्यात्मिक पिता, स्पिरिचुअल मास्टर कौन थे, प्रजापति दक्ष, उनसे सीखा था उन्होंने आयुर्वेदिक साइंस। तो जब दक्ष यज्ञ में, आप लोग जानते हैं, जब सती गई उधर शिव जी के मना करने पर, क्योंकि उन्होंने दक्ष ने शिव जी को तो निमंत्रण नहीं किया था, बाकी सारे देवता थे और खूब अपमान कर रहा था शिव जी का। तो इस प्रकार जब शिव जी का अपमान होता, सती से सहा नहीं गया, तो अपना शरीर से जो ताप से उन्होंने अपना शरीर को जला डाली, भस्म कर दिया अपने शरीर को। तो इसी प्रकार तो सारे लोग जो है खबर दिए शिव जी को, शिव जी इतना क्रोधित हो गए, निकाले अपना जटा, नीचे डालने पर वीरभद्र करके एक महान तेजवान जो है फायरी बॉडी जिसको रहता है वो प्रकट हुई और खूब तेजी से जाकर पूरा ध्वंस विध्वंस कर दिए। और सबसे मेन टारगेट था दक्ष को, एक तलवार ली और जो बलि के यहाँ पर एक लगाई चोट सर, और खाली सर को तो था, तो ये दोनों अश्विनी कुमार भी प्रेजेंट थे, वो भी थे उधर, शायद ये लोग सर्जरी करके संजीवनी मंत्र से जीवित करते, लेकिन वो जो गदा जैसा रहता है ना, उसको सर को ऐसा फोड़ दी, उनका आंख नाक कुछ पता ही नहीं चला, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, कीमा बना दिया उसको। फिर उसने बकरी का सर जो है, इतना एक्सपर्ट थे अश्विनी कुमार दोनों, बकरी का भी सर से भी इनका सर्जरी आता है, वो हमारा मेडिकल साइंस तो सोच भी नहीं सकते, कभी कभी हम भी करते हैं, नेक सर्जरी करते हैं, लेकिन ये बकरी का हेड के साथ जोड़ सकते हैं, ये तो संभव नहीं। तो वो भी उन्होंने जोड़ कर दे दिया, तो दक्ष जीवित हो गए। और पास में थे भृगु, उनका दाढ़ी निकाल दिया था वीरभद्र ने, तो दाढ़ी का भी हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया अश्विनी कुमार दोनों। और जो सूर्यदेव थे उनका पिता, उनका एक मुट्ठी मारा था, सारे 32 दांत निकल गए थे, सारे दांत को इम्प्लांट कर दिया। पीछे हमारा डेंटल क्लिनिक है, लेकिन बहुत दिन लगता है, 32 कम से कम 32x1 एक हफ्ता है, 32 हफ्ता लगेगा 32 दांत बिठाने के, लेकिन उन्होंने एक तुरंत ही उन्होंने सारे दांत बिठा दिया। और जो पास में थे एक भगव करके थे, भगव, उनका दोनों आंख को निकाल कर फेंक दिया था वीरभद्र ने। ऐसा कभी मेडिकल साइंस में अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि दोनों आंख को बाहर निकलने के बाद उसको डाल दे, अरे बाबा ये तो असंभव है, क्योंकि ये जो रेटिना में होता है ना, जो ऑप्टिक नर्व निकलता है, अभी तक कोई मेडिकल साइंस हुआ नहीं जो कि नर्व का नर्व जुड़कर नर्व कभी दोबारा हो सकता है ना, ये असंभव है। एक बार नर्व का डेथ हो गया, दैट्स इट, काम खत्म, और बाद में अंधा ही हो जाएगा। तो ये क्या करे, दोनों आंख को भी डाल दिए। तो भगा ने देखने लगा, अरे बाप रे, ये तो बड़ा कौन सा, ये इतना सक्षम थे हैं। तो और भी एक उनके बारे में कहा जाता है, एक राजा रुहा करते थे, उसका नाम है खेला। खेला राजा का एक पत्नी थी, वो वीर रमणी थी, योद्धा थी, जैसा आपने लक्ष्मीबाई का नाम सुना है जो झांसी का रानी थी, तो इस प्रकार युद्ध करती थी, बहुत पराक्रमी थी। तो एक बार युद्ध करते करते उनका एक टांग कट गई, तो टांग तो कट गई, तो लेकिन इसको करना क्या है, तो ये अश्विनी कुमार को बुलाया गया, उन्होंने लोहे का एक टांग बनाया, जो आजकल जयपुर फूट का नाम सुना रहेगा आप लोग, हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, तो जयपुर फूट से भी हम लोग जो है टांग को ये जोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो लोहे का टांग से जब मैंने जोड़ दिया, तो ये पूरा नॉर्मल हो गई, मैंने चलने लगी, और खाली उतना नहीं, सारे सेना को मारकर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार दध्यंची मुनि का भी एक कहावत है, मैंने शास्त्र पुराण में वर्णन है, दध्यंची मुनि बहुत ये थे, इंद्र से उनका थोड़ा शत्रुता हुई थी, तो इंद्र ने वज्र से उनको बोला, तुम्हारा सर को मैं काट कर ये कर दूंगा, तो कहते धमकी तो दे दिया था लेकिन तो ये उस समय क्या किया, एक आर्टिफिशियल सर बनाया अश्विनी कुमार ने। मैं उनका थोड़ा आयुर्वेदिक साइंस कितने एक्सपर्टाइज थे मैं बता रहा हूँ, आज के श्लोक से जड़ी थे उनके कथा। तो लकीली क्या हुआ कि इंद्र ने सर तो काटा नहीं इसलिए बच गए, नहीं तो फिर इतना एक्सपर्ट थे। और जो घ्राण शक्ति और दृष्टि शक्ति जो होते हैं, स्मेल पावर और देखने का शक्ति, ये कहते हैं कि जो अश्विनी कुमार का ध्यान करता है, उनका पूजा करता है, तो हम लोग को तो जरूरी नहीं है, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र या कृष्ण को पूजा करने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है कि नहीं। लेकिन ये आज भी लोग कहीं अस्पताल में हम देखते हैं तो उसका भी उपयोग किया जाता है, अश्विनी कुमार को रखा कर या पर जो है धनवंतरी उनकी आराधना की जाती है। तो इस प्रकार अश्विनी कुमार ये थे। तो हम देखते हैं जिस प्रकार आपने ये जानते हैं ना, जरा जरा करके एक राक्षसी थी, तो जरासंध तो आपने पढ़ा है ना, वो कृष्ण कृष्ण लीला में ये कंस का ससुर थे, है कि नहीं। तो उनको भी जन्म हुआ तो दो टुकड़ा थे ये भी, ऐसा करके उन्होंने भी, ये तो असंभव नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं आज के समाज में इतना गिर चुके हैं हम कि हमारा चेतना इतना गिर चुके, इसका एकमात्र कारण प्रभुपाद लिखते हैं There is a lack of Krishna consciousness because हम भगवान से जुड़े नहीं तो सारे ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान विशेष करके आयुर्वेद का ज्ञान सारे वेद में है। वेद में कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड सब कुछ है, और विशेष करके ऋग्वेद में, ऋग्वेद में ये बहुत विस्तार रूप से ये प्रसंग वर्णन है कि नहीं। तो इस प्रकार ये दोनों अश्विनी कुमार जो थे वो दोनों वहां आए थे, कौन कि च्यवन मुनि के आश्रम पे, कि वहां जाकर मुनि जी का दर्शन करेंगे। तो आए तो है, उसी समय क्या हुआ, जो पयांसु नदी था उसी नदी में ये जो सुकन्या रोज स्नान करती थी, तो यौवन अवस्था में थी, तो स्नान करने के समय उनका आंख जो है, दोनों जुड़वा भाई थे, उनका आंख उनके तरफ चला गया, उस सौंदर्य से आकृष्ट हो गई। तो दोनों तो को आकर तुरंत उनके सामने बोले, हे देवी आप कौन है, तो आपसे हम दोनों प्रभावित है, तो कृपा करके हम दोनों में से एक किसी को आप पति के रूप में स्वीकार करो। सुकन्या तो भयभीत हो गई, यार ये कौन, तुम दोनों कौन है, मैं तो जानता नहीं भी तुमको, दिखने तो है ऐसा तेज निकलना है शरीर से, बड़ा है स्वर्ग से कोई ऐसा ये लगते हो। तो बोलते तुमको पता है मैं विवाहित हूँ ना। नहीं नहीं विवाहित हमको पता है, एवरीथिंग वी नो, आपका पति देव वो कोई काम का नहीं है, दांत झड़ चुका है, चमड़ा ढीला हो चुका है, वो चल भी नहीं सकता है और ऊपर से अंधा भी है, क्या फायदा, रिजेक्ट हिम, जस्ट फेक, छोड़ो उसको। अरे हम दोनों को ये करो, हम तुमको खूब प्रकार का कहाँ कहाँ घुमाएंगे हमारे रथ के ऊपर, तुम दोनों सकल तो घोड़े जैसा दिखते हो, क्या बात करते हो। तो सुकन्या भी कुछ कम ये नहीं, तो पतिव्रता थी वास्तविक, ये शास्त्र में वर्णन है कि उनका पतिव्रता का परीक्षा ले रहे थे, कौन ये अश्विनी कुमार, दोनों विजय प्राप्त कर ली, किसी भी हालत पर मैं मेरा पतिदेव का, ये भला हो बुरा हो जैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता हो, है कि नहीं। तो इसी प्रकार तो जब उन्होंने ऐसा बोल दी तो दोनों को थोड़ा अपमानित लगा, कहा अच्छा कोई बात नहीं ठीक है चलते हैं। लेकिन उनका मन में इच्छा थी किसके, सुकन्या का, कि भाई ये दोनों को लगते तो है कोई जादूगर जैसा लगते हैं, कि उनके शायद कुछ कला है। तो पूछताछ करने के बाद पता चला ये दोनों डॉक्टर है, राज वैद्य है, बड़ा माने ये सब कला है उनमें। तो बोलते क्या आप दोनों अगर इतना क्वालिफाइड हो, क्या आप मेरा पति को यौवन अवस्था को प्राप्त दिला सकते, जैसा आपने सुना है ना ये जजाति का उपाख्यान में, जजाति भी ऐसा ही बोली थी अपना पुत्र को, सारे पुत्र ने मना कर, जो आखिरी पुत्र था उन्होंने सारे जवान दिए, तो ये असंभव नहीं है उस जमाने में। लेकिन आजकल ये साइंस ने एंटीऑक्सीडेंट ये सब देते हैं, जीन थेरेपी बहुत कुछ आ गया है, फेस लिफ्टिंग सर्जरी, मसल रिकंस्ट्रक्शन सब कुछ करते हैं, प्लास्टिक सर्जन, फेस माने फेशियल सर्जरी, लेजर सर्जरी, दुनिया भर के आ गया है, लेकिन कोई काम का नहीं है। कितने साल तक चलेगा वो तो आपको पता है, कई बार ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है, कई बार जो है इन्फेक्शन हो जाता है या और कुछ साइड इफेक्ट्स निकलता है जो है। देखिए आधुनिक ये में टेक्नोलॉजी भी एडवांस किया है, अभी भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बट व्हाट इज द आउटकम उसको देखिए। इतना सारे इम्यूनो सप्रेशन लेते तो और कुछ बीमारी निकलेगा, आपका ब्लड काउंट कम हो जाएगा, हजार इन्फेक्शन पकड़ेगा, फाइब्रोसिस होकर लंग्स खराब हो जाएगा, एक बीमारी का इलाज करने के लिए 50 और बीमारी खरीदेगा, ऐसे ही करते करते आदमी मर जाएगा, है कि नहीं। तो लेकिन उस जमाने में इतना टेक्नोलॉजी डेवलप था, है कि नहीं। तो उसने तो बोला हाँ बिल्कुल कर देंगे, कोई शर्त ये नहीं, लेकिन एक शर्त पे, हम करेंगे तुम्हारा पति को जीवित, लेकिन हम को तीनों में से तुमको एक चुनना है, क्योंकि दिखेंगे तीनों सेम। तो इस समय च्यवन मुनि थे अपना घर पे, ऐसा ये तो है कहीं जगह पर लिखा है कि ये प्रपोजल सुकन्या ने दी थी कि आप उनको जवान कर दो, लेकिन ये भागवतम कहता है कि स्वयं च्यवन मुनि ने कहा था कि मुझे जवान का वापस कर दो, जो भी है दोनों सत्य है। तो इस प्रकार जब वो जाकर मिलते हैं, च्यवन मुनि तो चल भी नहीं सकते थे, एक अश्विनी कुमार इधर एक इधर, दोनों हाथ को पकड़ते लंगड़ा लंगड़ा के बहुत कष्ट से। वही जो है पयांसु नदी के अंदर उन्होंने कुछ जड़ी बूटी भी साथ में लाए थे, जैसा पानी के ऊपर डाल दिया तो उसके फ्यूम्स आने लगे, बहुत खुशबूदार, इट वॉज लाइक केमिकल ये प्यूरिफिकेशन, और दिव्य जल हो गया। वैसा तो नदी भी बड़ा दिव्य था, तो जैसा ये तीनों ने उसके अंदर डुबकी लगाया, जब उठे, अरे भाई क्या ये तीनों एक जैसा है, 1 2 3 कोई अंतर नहीं, दिखने में बिल्कुल सेम हम सकल। क्या करना है, बड़ा चिंतित हो गई सुकन्या का, तो चुनना है कि कौन उसका पति है, तब जाकर उसका नाम ये रखा होगा, हाँ या ना। तो इसी प्रकार जब, लेकिन वो अपना जो रियली पतिव्रता स्त्री होती है वो पति को तो पहचान लेता है, कैसा ने जैसा देवता लोग होते हैं ना, इनका जो पैर इस जमीन को टच नहीं करता है। आप लोग देखेंगे कहीं शास्त्र में वर्णन है, आई थिंक यही वैकुंठ लीला में भगवान की, सारे देवता लोग जब आते हैं, ऐसा एक लीला हुआ था जगन्नाथपुरी में, एक सुवार था वो आनंद बाजार में बेचता था, तो इंद्र जी एक बार आए थे, अभी भी आते हैं जगन्नाथपुरी में, अभी भी आप जाएंगे, अच्छा हमारा तो ऐसा भाग्य नहीं है, कई लोग देखे हैं जो देवता लोग आते हैं, ब्रह्मा जी और ये इंद्र चंद्र वरुण सब आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन के, रात को 11 बजे 10:30-11 बजता है, तो बड़ा सिंहार वेश होता है ना, बहुत बहुत सुंदर वेश होता है जगन्नाथ जी का, तो उसको दर्शन के लिए आते हैं। इस बार इंद्र भी आया था, तो ऐसा करते करते वो कुछ महाप्रसाद ले लिया, लेकिन पैसा तो है नहीं उसके पास, उसका करेंसी अलग है, हाँ इंद्र का जो स्वर्ग का पैसा इधर नहीं चलता है, इधर इंडियन रुपीज चाहिए था, तो क्या करेंगे। तो इंद्र ऐसे जा रहा था, भाई कहाँ जा रहे हो, मेरा पैसा दे दो, तो ऐसा बोलते बोलते जब गया ये देखा ये चरण जो है उसका जमीन को टच नहीं कर रहा है, ऐसा करते स्वर्ग द्वार तक गया, वहां एक लकड़ी डालकर फिर ऊपर से विमान रेडी था इंद्र का जो है मातली, वो लेकर चला गया उसको। तो ये जब देखे तो फिर आकर इंद्र को उनको बोला तुम ऐसा कैसे जा सकते हो, मुझे कुछ वरदान करके जाओ, तो फिर वो आशीर्वाद दिया तुम जब चाहो उस समय तुम्हारी इच्छा से बारिश हो जाएगा। लेकिन उस समय उड़ीसा में जो दुर्भिक्ष पड़ा था तो बारिश नहीं हो रहा था, राजा बड़ा चिंतित थे, जो पुरी का राजा थे तो बड़ा चिंतित थे। तो फिर भी ये जब आया तो अपना दुकान पे जब बैठकर जब इच्छा किया, सारे जगह पर कहीं बारिश नहीं हो रही, उसी के दुकान के ऊपर धड़ धड़ करके खूब जोर से मेघ बरसने लगा। तो फिर राजा ने उसको बुलाया, फिर बोले कि तुम राज्य में चारों तरफ घूम के यही इच्छा करो। तो सारे उड़ीसा में उस समय दुर्भिक्ष भी जो है इसका ये हो गया था। तो इस प्रकार आप जानते हैं, तो देवता लोग को ये आप लोग देखेंगे तो उनका चरण नीचे नहीं लगता है। तो ये सुकन्या ने देखी, ये तीनों तो बाहर निकल रहे, नहीं दो फुटप्रिंट्स नहीं जा रहे, दोनों जो है लेफ्ट राइट सेंटर वाला का चरण चिन्ह दिख रहे हैं, कीचड़ रहता है ना नदी से बाहर निकलते कीचड़ रहता है, कीचड़ के ऊपर जब चरण चिन्ह देगा दिस इज माई हस्बैंड। और एक कहीं पर वर्णन है कि देवता लोग आंख का पलक ऐसा नहीं गिराते हैं, मनुष्य जैसा गिरता है पलक, तो ये भी एक जो भी है तो ऐसा पहचान ली। तो ये दोनों आश्चर्यचकित हो गए, बोलते खूब आशीर्वाद दिए, वास्तविक तुम ही पतिव्रता स्त्री हो, धन्य हो तुम। जैसा आप लोग जानते हैं पतिव्रता स्त्रियों में से सीताराम, कर्दम मुनि और देवहूति और द्रौपदी पंचसती है, हैं मंदोदरी और अनेक अनेक ऐसा है गांधारी, ये सब अपना सतीत्व के लिए हैं ये प्रसिद्ध है। तो ये भी सुकन्या ऐसे ही थी। तो इस प्रकार जब आए तो च्यवन मुनि, भाई रुक जाओ रुक जाओ, तुमने इतना मेरे जवानी दे दिया, मेरे को मेरा भी कुछ कर्तव्य होता है, तुमको कुछ देने का है ना, क्या देंगे आप। एक्चुअली कहीं पर वर्णन है कि सुकन्या ने इन दोनों को पहले जब देखी उसका मन बिल्कुल आकृष्ट नहीं हुआ, सच में आकृष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ये थे कौन अश्विनी कुमार दोनों, ये दोनों डॉक्टर लोग जो देवलोक के, उनको शूद्र करके नाम के जानते हैं, शूद्र मतलब दे आर द फोर्थ क्लास, उनको कोई पूछता नहीं था। हालांकि अश्विनी कुमार तो क्वालिफाइड थे, वेदज्ञ थे, सार वेद को ज्ञान था उनको, लेकिन साधारण तो वो कभी कभी क्या करते थे, ये मनुष्य लोक में आकर भी कभी कभी ट्रीटमेंट कर देते थे, कौन अश्विनी कुमार, तो बोले तुम लोग नीचे हो, तुमको सोमरस का पान का अधिकार नहीं है, इसीलिए इन दोनों का शरीर से थोड़ा तेज कम था बाकी देवता के कंपेरिजन में। तो ये चीज सुकन्या को समझ में आया, तो सुकन्या ने बोली तो तुम सोमरस पान नहीं क्यों, इसलिए तुम दोनों को मैं पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो वही तो च्यवन मुनि बोले मैं एक सोम यज्ञ करने जा रहा हूं। सरयाती राजा को फिर बुलाए और उन बड़ा धार्मिक राजा थे, तो उन्हीं के अध्यक्षता में बहुत सुंदर जो यज्ञ अनुष्ठान किए, तो यज्ञ कुंड से एक व्यक्ति, यज्ञ पुरुष जो होते हैं ना, वो वो लेकर आए क्या सोमरस, जिसको पीने से प्रभुपाद बोलते 10,000 साल मनुष्य का जीवन बढ़ आयु बढ़ जाता है जो चंद्रलोक में प्राप्त होती है कि नहीं, अभी भी है प्रभुपाद बोलते हैं, लेकिन हमें तो हमारे कोई अनुभूति नहीं है, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहा गया है। तो ये जो है समझ रस को जैसा उन्होंने चवनमुसी देने जा रहे थे, आ गया इंद्र जी, है खबरदार स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, ये दोनों डॉक्टर्स जो होते हैं ये सारे शूद्र है, ये आके कभी कभी स्मशान खान में जाता है, हैं क्रिमेटोरियम उधर जाके सब जीवित करता है, सर्जरी वर्जरी करता है, ये इसको मत दो है, इसको क्या तुम समझ दे रहे हो। तो बोलते नहीं इतने मेरा सेवा किए, नहीं दे आर नॉट क्वालिफाइड। इतना बोलते ही तुरंत अपना जटा से निकाला कौन, च्यवन मुनि धाड़ करके गिरा दिया नीचे, महान मदा करके एक मदा है, एक महान असुर वो भी प्रकट हो गया, जैसा आपने दुर्वासा मुनि का सुने इस प्रकार। तो ये भी कुछ कम ये नहीं था भयानक, जाकर सीधा इंद्र को खाने, एक्चुअली इससे पहले एक होता है जब उन्होंने मना कर दिया कौन, इंद्र ने वज्र उठाकर फेंकने जा रहा था ये अश्विन को, मार दूंगा तुम दोनों को, सोमरस पी रहे हो है पता है तुमको, तो ऐसा करके जा रहा था, दोनों हाथ पैरालिसिस हो गया, दोनों सोल्जर ड्रॉप सोल्जर ऐसा होता है, बिल्कुल नो मूवमेंट, पड़ा ऐसा 0/5 पावर, मसल पावर, तो क्या करेगा। तो ऐसे ही तो बड़ा बड़ा खोद आ गया, बोलते फिर अपना जब देखा जान खतरा में है, मदा आकर उनको खाने वाला है, बोलते नहीं 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 अभी दोनों को सोमरस प्राप्त कर दो। तो जब ही जाकर ये अश्विनी कुमार दोनों ही उनका सर्जरी किया था, सर्जरी मतलब ऐसे ही मंत्र के द्वारा कंधे ठीक कर दिया था। तो इस प्रकार बहुत कुछ ऐसा वर्णन है कि फिर दोनों सोमरस पान करे, तो अगले ये मैं आप लोग पढ़ेंगे किस प्रकार जो है ये दोनों अश्विनी कुमार च्यवन मुनि को जवन प्रदान किए थे। फिर आगे जाकर ये जब उनका राजा सरयाती राजा जब आते हैं तो देखते हैं अपना पुत्री के साथ कौन नौजवान लड़का बैठा है, तो उनको संदेह करेंगे, सब आगे आप चर्चा करेंगे, तो मैं इसको बोलना नहीं चाहता हूँ। तो इस अध्याय से हम सीखे कि जो सारे चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो कोई भी ये हो, तो प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में सबसे बड़ा सफलता होती है जब हम जो है जीवन की सफलता ये है कि हम कम से कम एक भक्त बने। तो इसलिए ये भक्त बनने का उपाय भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के सारे वैदिक ज्ञान है, जो वेदांत सूत्र की जो कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम, सारे वेद का जो निगमा कल्पतरु यानी पका हुआ आम के समान है कि नहीं। तो ये भागवत में सारी विद्याएं है, अनेक उपाख्यान है, लेकिन जो है जैसा चैतन्य महाप्रभु के समय जो चैतन्य महाप्रभु गाया करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, आनी छे औषध माया नासी वार लागी, हरि नाम महामंत्र ले हो तुमी मागी। तो कलयुग में ये मृत्यु समझे में नहीं तो हमको आता नहीं ना, ब्रेन ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट ये सब फेल हो चुका है, बहुत बार हो चुका है, माने बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं लेकिन नोबडी सक्सेसफुल। हार्ट तो मतलब मिजरेबल फेल हो चुका है, लंग्स तो मैंने और फेल हो चुका है, ब्रेन तो ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता है, ज्यादा से लिवर किडनी थोड़ा कर रहे हैं। तो क्या उपाय है कि हम अपने को सुस्त रखे, तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र। यही एक महामंत्र में इतना शक्ति है, सर्व औषधि, और सबसे बड़ा रोग है भवो भवो रोग, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। तो ये है ये जो आप सभी लोग, जैसा कि हमारा क्लिनिक में मैं बैठता हूं तो बहुत सारे ब्रह्मचारी को मैं देखता हूँ कभी आते नहीं, तो मैं बोला प्रभु जी आप क्या क्या है ना, हमारा मंत्र इतना शक्तिशाली है, ऐसा मंत्र हम करते हैं अरे बीमारी क्या उसका बाप भी हमारे पास नहीं आता है। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं मैं, बहुत सारे मैं भक्तों को जानता हूं जो कभी भी एक बार भी क्लिनिक में आते ही नहीं, छोटा मोटा कुछ होता है तो मेरा थोड़ा अनुभूति 2-4 मिनट में बोल देता हूं कि वास्तविक ऐसा प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा मंत्र दिया है, कोई डॉक्टर के पास जाने का ही जरूरत नहीं। आप सोचिए अभी अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य वैष्णव महाराज का मैं अवसर प्राप्त हुआ था, महाराज को बुखार आ रहा था, तभी केशव कुंज में रहते थे तो मुझे बुलाए राजचरण आके देखो, तो मैं बोला बहुत सारे टेस्ट किया, एक रिपोर्ट बोलता है पॉजिटिव, दूसरा बोलता है नेगेटिव, सारे कंफ्यूजन करे क्या, और महाराज है तो करे क्या, ये थोड़ा इंजेक्शन देने से कम होता है फिर बुखार आता है। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं शायद मेरा जीवन में इतना मैंने राधारानी के चरण में सोचा धिक्कार है मेरा जीवन को, मैंने 30 साल से इतना ओपन हार्ट सर्जरी 10,000 कर चुका लेकिन सिंपल एक हार्ट अटैक को मैंने मिस किया, और महाराज को बिल्कुल कोई लक्षण नहीं था, हृदय जो हार्ट अटैक का कोई भी लक्षण नहीं था और महाराज को थोड़ा सा चेस्ट पेन था और ऊपर से बुखार, जो कि सारे डॉक्टर्स को मैंने कंसल्ट किया कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। तो महाराज फिर गए फरीदाबाद, वहां पे उनको ECG, सिंपल एक चीज। मेरा कहने का मतलब है चाहे आप कितना भी बड़ा वैद्य हो, कितना भी बड़ा सर्जन हो, यह जब तक भगवान का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं, जो सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज के प्रार्थना में नृसिंहदेव को प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कोई पिता अपना जो पुत्र और कन्या को सुरक्षा नहीं दे सकता है और डूबता हुआ आदमी को भी एक एक्सपर्ट स्विमर स्कूबा डाइवर वो भी बचा नहीं सकता है, या तो कोई फिजिशियन या सर्जन किसी भी मरीज को अपना जीवन के एक सेकंड तक जीवन नहीं बढ़ा सकते अगर भगवान का कृपा अनुग्रह ना हो। तो कहने का एक चीज मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि चाहे हम कितना भी ये है, कितना भी एक्सपीरियंस है, अनुभूति है, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा नहीं है हमारे सब चीज फेल हो जाए। तो मैं आप सभी को चरण में निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मुझे भी आशीर्वाद दे। जैसा प्रभुपाद जी ने लिखा है, हर वैद्य को कम से कम भक्त होना चाहिए। अगर हम ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में या किसी जन्म में अगर भक्त बन पाए तो यही है जीवन के सारे सबसे बड़ी सफलता। तो ये ज्ञान भी भगवान कृष्ण ने जो 64 कलाएं जो भगवान होती है उसमें एक मेडिकल साइंस भी आता है और आदरणीय तो उसमें कृष्ण का गुरु है। तो हम सभी को यही जो हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से मॉर्निंग साधना इतना अच्छे से करे तो हम सुस्त रहेंगे, क्योंकि शरीर अगर सुस्त नहीं रहेगा ना हम सेवा कर पाएंगे, ना साधना, ना हम स्वाध्याय, तीनों के तीनों शरीर के ऊपर आधारित है ना। तो इसी प्रकार तो हम भी प्रार्थना करें कि अश्विनी कुमार को तो हम इतना तो ये नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ठाकुर जी कृष्ण के धाम श्री वृंदावन धाम में रहकर हम अगर सही ढंग से भजन करें और खुद को आरोग्य रखें, हम अधिक समय जीवित रह सकते हैं और साथ ही साथ हम जो भजन में अग्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्ण, समय हो चुका है, महाप्रसादे गोविंदे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो बहुत कुछ ज्ञान नहीं है, तो आप लोगों को कोई अगर त्रुटि है आप उसको सुधारने की कृपा करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। नितागौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।